नमस्कार भारत, बुधवार 16 दिसंबर, मैं हूं निखिल रंजन। दिल्ली के निर्भया बलात्कार कांड को 3 साल बीते, क्या कुछ गुजरा पीड़ितों पर?
अकेले नहीं रहा जाता। इन 3 सालों में हमें पता नहीं कहां कहां कितना संघर्ष करना पड़ा, किसके किसके दर पर भटकना पड़ा।
निर्भया कांड के बाद कितनी बदली, कितनी सुधरी दिल्ली, सुनिएगा दिल्ली के लोगों की राय। पेशावर के स्कूल पर तालिबान चरमपंथियों के हमले में 132 बच्चों की आज ही गई थी जान, अब कैसा है पेशावर?
हर दिन, हर दूसरे दिन यहाँ पर कोई न कोई वाकया होता था। अब तो हम अपने आप को काफी महफूज महसूस करते हैं पेशावर में।
अखबारों की समीक्षा के साथ खबरें होंगी और भी, लेकिन पहले प्रमुख समाचार।
बीबीसी समाचार, हरिता कांडवाल से। दिल्ली के निर्भया कांड को आज 3 साल पूरे हो रहे हैं। 16 दिसंबर 2012 को निर्भया का दिल्ली में एक चलती बस में सामूहिक बलात्कार किया गया था। इस घटना की चर्चा दुनिया भर में छाई रही थी और इसके बाद बलात्कार जैसे अपराधों पर कड़े कानून की मांग को लेकर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए थे। उधर पाकिस्तान के पेशावर में स्कूल पर चरमपंथी हमले को आज 1 साल पूरा हो रहा है। इस हमले में 150 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी, जिसमें ज्यादातर बच्चे शामिल थे। अमेरिका के लॉस एंजलिस में हमले की धमकी मिलने के बाद करीब 1000 स्कूलों को बंद करने के फैसले पर अमेरिका की हाउस इंटेलिजेंस कमेटी ने कहा है कि ये फर्जी धमकियां थीं। न्यूयॉर्क में भी हमलों की धमकी मिली थी। न्यूयॉर्क पुलिस के मुखिया ने कहा है कि लॉस एंजलिस में स्कूल बंद करना जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया थी। वहीं लॉस एंजलिस में अधिकारियों ने स्कूल बंद करने के फैसले का बचाव करते हुए कहा है कि सुरक्षा पर संदिग्ध खतरे को देखते हुए ये जरूरी था। लॉस एंजलिस के मेयर एरिक गार्सेटी ने कहा कि इस फैसले से करीब 7 लाख बच्चे प्रभावित हो रहे हैं, लेकिन ये सावधानी का हिस्सा है।
We will continue to hope that this is nothing.
हमें उम्मीद है कि ये धमकियों में कोई दम नहीं था और बच्चे बुधवार से स्कूल जा सकेंगे, लेकिन एक पिता और मेयर होने के नाते मैं स्कूल में तलाशी के लिए मदद कर रहा हूं, जिससे ये तय हो जाए कि बच्चों के लिए स्कूल सुरक्षित है। ये बहुत ज्यादा सावधानी का हिस्सा है। ये थे लॉस एंजलिस के मेयर एरिक गार्सेटी के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। अमेरिका और रूस ने कहा है कि दुनिया के ताकतवर देश न्यूयॉर्क में शुक्रवार यानी 18 दिसंबर को संयुक्त राष्ट्र में सीरिया की शांति प्रक्रिया से जुड़ा एक प्रस्ताव लाएंगे। मॉस्को में अमरीकी विदेश मंत्री जॉन कैरी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और विदेश मंत्री सर्गे लावरोव से मुलाकात की। जॉन कैरी ने कहा कि चरमपंथी संगठनों पर दोनों देशों के बीच कुछ मामलों में सहमति बनी है। वहीं रूस के विदेश मंत्री सर्गे लावरोव ने कहा कि विवादपूर्ण मसलों पर अमरीका और रूस बातचीत जारी रखेंगे। दिल्ली सचिवालय में सीबीआई के छापे के बाद राजनीतिक तूफान खड़ा हो गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मंगलवार को सीबीआई ने दिल्ली सचिवालय में छापे वित्त मंत्री अरुण जेटली से जुड़ी कुछ फाइलें खोजने के लिए मारे थे। सीबीआई ने मंगलवार सुबह दिल्ली सचिवालय में छापा मारा था और कहा था कि छापा मुख्यमंत्री केजरीवाल के दफ्तर पर नहीं बल्कि उनके प्रधान सचिव राजेंद्र कुमार के दफ्तर पर मारा गया था। इसके बाद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी, कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी पार्टियों ने सरकार की कड़ी आलोचना की है। बीबीसी समाचार।
नमस्कार भारत, बीबीसी रेडियो की पहली सभा में आपका स्वागत है। ये कार्यक्रम आप bbchindi.com और मोबाइल पर भी सुन रहे हैं। आज निखिल रंजन के साथ। आज 16 दिसंबर है। सालों तक बांग्लादेश और भारत इस तारीख को मुक्ति दिवस और विजय दिवस के रूप में मनाते हुए गौरव का अनुभव करते रहे, लेकिन पिछले 3 सालों में बहुत कुछ बदल गया। 3 साल पहले जब दिल्ली की सड़कों पर 23 साल के निर्भया के साथ बलात्कार हुआ, उसके बाद सारी यादें धुंधली पड़ गईं। तकलीफ, दुख, शर्म और बेबसी और इसके साथ गुस्से का जो उबाल फूटा, वो हम सबके जहन में कितनी ताज़ा है इसका एहसास हम सबको है। लेकिन 16 दिसंबर सिर्फ निर्भया की ही नहीं, पेशावर के उन 132 नौनिहालों की भी याद दिलाता है जिन्हें पिछले साल उनके स्कूल पर हमला कर तालिबान चरमपंथियों ने गोलियों से भून दिया। आज नमस्कार भारत में हम इन्हीं 2 घटनाओं को याद कर रहे हैं जिन्होंने दुनिया को हिला कर रख दिया। पहले बात निर्भया की। वो साल 2012 में दिसंबर महीने की 16 तारीख थी जब पैरामेडिकल की छात्रा निर्भया के साथ चलती बस में सामूहिक बलात्कार की घटना ने दुनिया को झकझोर दिया था। बलात्कार के बाद पीड़ित लड़की बगैर कपड़ों के सड़क पर फेंक दी गई और बाद में राहगीरों ने किसी तरह उसे अस्पताल पहुंचाया। निर्भया को इलाज के लिए सिंगापुर भी ले जाया गया, लेकिन जहां उसकी मौत हो गई। इस मामले में सभी 6 अभियुक्तों को अदालत ने दोषी पाया था, इनमें एक नाबालिग था। हमारे सहयोगी विनीत खरे निर्भया के परिवार से मिलने उनके घर गए।
आज हमारे साथ हैं निर्भया की माँ आशा देवी। आशा जी, ये जो 3 साल गुजरे हैं वो कैसे गुजरे हैं आपके?
मुझे लगता है कि हम वहीं के वहीं खड़े हैं। कहते हैं कि समय बीतता है या धुंधली हो जाती है, लेकिन हमें ऐसा नहीं हुआ। तो हमें लगता है कि आज भी हम वही सफदरजंग और घर के बीच में हैं। सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर वैसे ही दिखती है। उस टाइम तो बहुत लोगों का आना जाना रहा, समय नहीं था कि कुछ सोचें, लेकिन अब तो कभी कभी बिल्कुल अकेले होते हैं तो बहुत मुश्किल होती है। बाहर रहते हैं, लोगों से बात होती है, सामने रहते हैं नहीं, लेकिन घर में मुझे आज भी अकेले नहीं रहा जाता। इन 3 सालों में हमें पता नहीं कहाँ कहाँ कितना संघर्ष करना पड़ा, किसके किसके दर पे भटकना पड़ा। मेरे अपनी लाइफ कुछ भी नहीं बची, बस एक यही मकसद है कि किसी तरह उनको सजा हो जाए और बच्ची को इंसाफ मिल जाए। मुझे नींद नहीं लगती है। अब जैसे अब ये दिन आ रहा है तो जैसे लग रहा है कि नहीं, अभी तो आई थी, मेरे साथ थी, तो और यादें ताजे होती जाती है। तो इससे लगता है कि पता नहीं कभी हम इससे उभर पाएंगे भी कि नहीं।
अकेली रहती हैं तो फिर क्या सोचती हैं? फिर
उसी में अपने आप में लड़ते रहते हैं कि मैंने हमारी कहाँ गलती थी, बच्ची की कहाँ गलती थी, क्यों हो गया ऐसे। हो गया, उससे हमारा समाज है, हमारी व्यवस्था क्या सबक लिया। ऐसा नहीं है कि वही घटना हुई, चलो वहाँ से सब ने सबक लिया, कुछ भी नहीं है। रोज़ घटनाएं होती है, रोज़ बच्चियों को कहीं कुएं में, कहीं जंगल में, कहीं कुछ, कहीं जला के, हर रोज़ ऐसी घटनाएं आती हैं। तो तकलीफ ये होती है कि हम कैसे समाज में रह रहे हैं, कैसे प्रशासन में रह रहे हैं कि जनता को किसी की कोई परवाह ही नहीं है। अगर एक मुजरिम को बचाना होता है तो पूरी कायनात लग जाती है कि उनको फांसी नहीं होना चाहिए, उनको सजा नहीं होना चाहिए। अगर एक बच्ची रोड पे पड़ी रहती है, चिल्लाती है बचाने के लिए, तो कोई सुनता ही नहीं है, देख के मुंह मोड़ लेता है। तकलीफ होती है कि हम कहाँ जी रहे हैं। इतना कुछ होने के बावजूद भी 100 साल पुराना कानून में हमारी सरकार, हमारा न्यायपालिका सब जी रहा है कि नहीं, कानून के अंदर में हमें सजा देना है, कानून में यही है। अब मुजरिम क्राइम करते वक्त न उम्र देखता है, न समय देखता है, न कि हम क्या कर रहे हैं। क्राइम के लिए कोई उम्र नहीं और सजा के लिए उम्र देखते हैं। तो मुझे अब निराशा हो रही है अपने कानून व्यवस्था से।
आपने कहा कहाँ गलती हो गई, गलती से आपका क्या मतलब है? गलती के बारे में क्यों सोचती हैं आप?
गलती के बारे में यही सोचते हैं कि मैंने आज हमारे समाज में चल रहा है कि बेटियों को पढ़ाइए, बेटियों को शिक्षा दीजिए, बेटियों को बचाइए। हमने तो आज वो 25 साल पहले कर दिया। हमने कभी समझा ही नहीं कि नहीं, हमारी एक बेटी है, हमने तो बेटे जैसे ही उसको भी माना, बल्कि उससे भी ज़्यादा माना। हमारे मन में ये रहता था, कभी इसके मन में ना आए कि नहीं, माँ बाप हमारे को भाई से कम प्यार करते हैं, भाई भी उसको अपनी जान छिड़कते थे, पहले उसको कोई चीज़ पकड़ाएंगे फिर उनको खुद लेंगे। तो हमने कहाँ किया कि कुदरत ने भी हमारा साथ नहीं दिया। कोई ऐसा टाइम भी नहीं था कि चलो बच्ची 12 बजे घूम रही है, 2 बजे घूम रही है, 8:30-9 कोई आदमी ऑफिस से आता है, कहीं से भी आता है, कोई टाइम नहीं होता है। तो यही तकलीफ होती है, अपने आप से जूझते हैं कि हमने क्या गलती कर दिया कि हमारे साथ ऐसे हो गया।
कभी सोचती हैं कि अगर मैंने ये किया होता तो
शायद ये ना होता।
नहीं, मुझे तो नहीं लगता है कि मैंने, आखिर जब पढ़ाना लिखाना है उस टाइम वो ऐसे भी उस आई थी पेपर देके, उसकी भाग दौड़ थी कि इंटर्नशिप लेना था उसको, तो ऐसे भी वो इंटरव्यू उसके हो रहे थे हॉस्पिटल में, तो हम कहाँ तक उसके साथ जाते। तो मुझे तो ऐसा नहीं, यही मैं ढूंढती हूँ कि मैंने कहाँ हमसे चूक हो गई कि मैं उसको, अब ये तो है नहीं कि बता के भी गई कि मैं इतने देर में आ रही हूँ, ये भी तो यही सोचती हूँ कि मैंने आखिर कहाँ उसकी गलती थी, क्यों उसके साथ ऐसे हो गया। देखिए, जो तकलीफ उसको मिली तो इस 3 साल के दायरे में ही हम घूमते हैं, उस घटना से लेके अब तक घूमते हैं, पीछे ध्यान नहीं जाता कि नहीं वो क्या करती थी कैसी थी, ये तो कभी कभी जाता, लेकिन जो उसको तकलीफ मिली सामने से, एक एक सांस उसकी ख़त्म हो गई, वही चीज़ें सब दिखती है, वही याद आती है। तकलीफ ये होता है, वो तो मर गई लेकिन हम रोज मरते हैं, रोज जीते हैं, एक ही मन में रहता है कि चलो कम से कम उनको सजा मिल जाती, चाहे अभी भी जो चीज़ें खराब हो रही हैं कम से कम इस पे हमारी न्याय व्यवस्था, हमारी सरकार एक बार विचार करती तो ये होता कि चलो हमारी बच्ची तो हमें नहीं मिली लेकिन और बच्चियों के लिए कुछ हो गया, लेकिन ऐसा भी नहीं है। संतोष करने वाली कोई चीज़ ही नहीं दिखती कि जिसको देख के आदमी संतोष करे।
जो रिपोर्टें हैं कि जो जुवेनाइल था उसको किसी एनजीओ को सौंपा जाना है।
देखिए, हमें इस पे विश्वास नहीं होता कि वो एनजीओ को सौंपा जाएगा, चाहे कुछ भी हो, हमारे लिए तो वो आज़ाद है, जेल से छूट गया वो आज़ाद है, तो चाहे उसको एनजीओ भेजे, चाहे घर में रखे, चाहे अपने पास रखे, उससे वो मेरे लिए मायने नहीं रखता। मेरे लिए मायने ये रखता है कि हमारे बच्ची का एक दोषी छूट गया। अभी जो घटना है, वो कुएं, जो कुएं में डाले हैं उसमें 2 जुगनाइल है, पीछे जो 2.5 साल की बच्ची के साथ हुआ था उसमें 2 जुगनाइल है, उन बच्चियों को तो लाइफ खराब हो गई, पता नहीं ये भी बच्ची बचेगी कि नहीं बचेगी, लेकिन ये तो जुगनाइल करके छूट जाएंगे। तो उस टाइम अगर इस कानून को बदल दिया गया होता तो ये कम से कम इनको तो सजा मिलती, चाहे ये करते ही नहीं, कम से कम मन में डर तो रहता कि नहीं हम भी करेंगे तो हमें भी सजा मिलेगी, लेकिन ऐसा है नहीं, कानून का कोई डर खौफ नहीं है, इनके लिए तो राइट है कि हम 18 साल से पहले कुछ भी करते हैं। लेकिन इतना ज़रूर कहूँगी कि इतना बड़ा क्राइम होने के बाद उसके दोषी को अगर हमारी न्यायपालिका चाहे हमारी सरकार अगर छोड़ रही है तो ये हम उन उम्र के बच्चों को क्राइम की तरफ इशारा कर रहे हैं कि आप कुछ भी कर सकते हो 18 साल से पहले, आपके लिए कोई सजा नहीं है। ये समाज के लिए गलत संदेश जा रहा है, और वो छूटेगा तो एक समाज के लिए बहुत बड़ा खतरा है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि जिस तरह से उसको बचाने के लिए हमारी सरकार हर संभव कोशिश कर रही है, तो पब्लिक की भी सुरक्षा सरकार की जिम्मेवारी बनती है, एक बार पब्लिक के बारे में भी और मेरे जैसे विक्टिम के बारे में भी सरकार को सोचना चाहिए कि हमारे पे क्या गुजरती है। बाकी मैं अब क्या कहूँ।
निर्भया की माँ आशा देवी से बात कर रहे थे हमारे सहयोगी विनीत खरे। 16 दिसंबर की तारीख दिल्ली को निर्भया के दर्द की याद दिलाती है। अपने दोस्त के साथ फिल्म देखकर लौटती एक युवती से 6 लोगों ने चलती बस में गैंगरेप किया। इस घटना को लेकर दिल्ली ही नहीं पूरा देश आक्रोशित हुआ। महिलाओं की सुरक्षा लेकर चौक चौराहों से लेकर संसद तक जोरदार बहस हुई, कानून भी बदला, लेकिन 3 साल बाद इस बदलाव का क्या असर है, हमारे सहयोगी वात्सल्य राय ने यही जानने की कोशिश की है।
मैं अभी दिल्ली के विजय चौक पर हूँ। मेरे सामने राष्ट्रपति भवन और दाईं तरफ संसद भवन है। सड़क पर ट्रैफिक अपनी रफ्तार से भाग रहा है। भागते वक्त को थाम कर अगर 3 साल पीछे लौटें तो हमें वो तस्वीर याद आती है जहां विजय चौक पर सैकड़ों नौजवान जुटे थे, उनमें से ज्यादातर छात्र थे। वो इंसाफ मांगने आए थे, अपने लिए नहीं, निर्भया के लिए। जी हाँ, वही निर्भया जिसके साथ 16 दिसंबर की रात इसी दिल्ली की सड़क पर चलती बस में गैंगरेप हुआ था। उस रात निर्भया ने जो दर्द सहा उसकी टीस न सिर्फ दिल्ली, न सिर्फ देश, बल्कि पूरी दुनिया ने महसूस की। इंसाफ की मांग को लेकर बिना बुलाए सैकड़ों लोग सड़कों पर उतरे। इसका असर हुआ, कानून भी बदला। लेकिन आज 3 साल बाद 16 दिसंबर की वो रात और निर्भया कितने लोगों को याद है?
याद है, याद है।
हाँ नहीं, मैंने देखा है टीवी में।
हाँ याद है
जरूर। एक्चुअली मैंने जिन लोगों के साथ इंटरेक्ट किया है मुझे तो खास करके याद है। द निर्भया केस टू सम एक्सटेंट इट वाज अ गेम चेंजर।
पूरी तरह से याद है।
उसके बाद कुछ बदलाव आपको दिल्ली में नजर आता है?
नहीं, 2 दिन पहले 7 साल की लड़की को भी रेप हो गए।
जितनी बर्बरता उन्होंने दिखाई थी उतना ही बर्बर उनको दंड मिलता तो लोग सहमते।
मेरा नाम श्रीनिवास है, मैं करीमनगर से आया हूँ।
लेडीज लोग पूरे अकेले चल रहे हैं अभी, उसलिए थोड़ा चेंज आया है।
तमन्ना सिन्हा। कई जगह पे मैंने खुद जो महसूस किया है कंपेयर टू 3 इयर्स बैक व्हेन आई केम टू दिल्ली एंड आज के ज़माने में, मतलब 3 इयर्स डाउन द लाइन आई फील कि हाँ थोड़ा तो करक हुआ है।
मेरा नाम संजय कुमार हुआ। दिल्ली में तो काफी बदलाव आ गया है।
मुन्नी कुमारी।
हाँ, बहुत सुरक्षित है।
मेरा नाम ज्योति है। मुझे नहीं लगता कि आफ्टर दैट कुछ भी चेंजेस आए हैं दिल्ली में। तब टाइमिंग के लिए थोड़ा सा गवर्नमेंट, थोड़ा सा पुलिस, थोड़ा सा लोग भी थोड़ा अवेयर हो गए थे, बट देर आफ्टर नो चेंजेस। पीपल स्टिल ट्रीट गर्ल्स सेम एज दे डू अर्ली।
मैरियट। सोच थोड़ी बहुत बदली है लेकिन कई इलाकों में ऐसा है अभी भी अंधेरे में निकलने में डर लगता है। जैसे मेरी बेटी भी अभी 12th में है तो वही होता है, बार बार फ़ोन करके पूछना पड़ता है कि बेटा आप कहाँ पहुँच गई।
आकांक्षा शर्मा। मैं पॉलिटिकली ना बात करके अगर बात करूँ सोसाइटी की तो डेफिनेटली सोसाइटी की टर्म्स में बहुत कुछ बदला है।
अभिलाषा अग्निहोत्री। मैंने एक्सपीरियंस किया है, ज़्यादा नहीं बदली है बट धीरे धीरे चेंज स्टार्ट हो गया है।
तो आपको क्या लगता है, क्या बदलाव और होने चाहिए?
मानसिकता बदलनी चाहिए, थोड़ा कानून की भी ज़रूरत है, दंड थोड़ा अच्छा होना चाहिए। छोटा होना या बड़ा होना उसके अपराध को कम नहीं करता है।
So being a woman, I feel ki giving protection to women is one of the most important functions of any government.
लोगों को अपने अंदर फील होना चाहिए कि we should be safe somewhere, whether it is girl or boy.
पुलिस भी थोड़ी टाइट होनी चाहिए।
See, it's a free country and everybody has the freedom to whatever they want to wear and you know their opinions.
Definitely for sure, और भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए कि अगर आपके आसपास ऐसा कुछ हो रहा है तो आपको अपनी आवाज उठानी चाहिए।
दिल्ली के लोगों को 16 दिसंबर की रात याद है, निर्भया याद है, उसे इंसाफ दिलाने के लिए जो आंदोलन चला था वो याद है, कानून में बदलाव हुआ ये भी याद है। हालांकि वो मानते हैं कि अब भी दिल्ली को निर्भय बनाने के लिए बहुत कुछ किया जाना बाकी है। वात्सल्य राय, BBC, विजय चौक, दिल्ली।
निर्भया कांड के 2 साल बाद यानी आज से ठीक 1 साल पहले पाकिस्तान के पेशावर में आर्मी पब्लिक स्कूल पर तालिबान के हमले में 142 लोग मारे गए थे। इनमें से 132 बच्चे थे। मरने वाले बच्चों में हारिस नवाज भी थे। हारिस के भाई अहमद नवाज भी इस हमले में गंभीर रूप से घायल हुए। उन्हें इलाज के लिए ब्रिटेन के शहर बर्मिंघम भी ले जाया गया। अहमद अभी भी वहीं रहते हैं। BBC के आदिल शाजेब ने बर्मिंघम में अहमद और उनके परिवार से मुलाकात की और इसके बाद ये रिपोर्ट भेजी है।
अहमद नवाज के जाहिरी जख्म तो भर गए हैं लेकिन उस दर्दनाक दिन के घाव अभी भरे नहीं। वो खुद शदीद जख्मी हुए जबकि इनके छोटे भाई हारिस नवाज इस हमले में हलाक हुए, जिनकी यादों को भूल पाना शायद इनके लिए नामुमकिन है।
इस सानहे ने मेरी पूरी जिंदगी, ख्यालात, सब कुछ बदल के रख दिया। मेरे भाई, मेरा सबसे प्यारा दोस्त, सब कुछ मैंने खो दिया।
और इसी का इजहार इस वाक़े के 1 बरस पूरा होने पर मुख्तलिफ तकारीब में अहमद अपनी तकरीर में भी करेंगे।
मुझे जैसी गोली लगी उसके बाद मैं गया हूँ दूसरे कमरे में, हम लेट गए तो उस कमरे में बहुत ज्यादा जख्मी भी थे और डेड बॉडीज भी पड़ी। तो वहाँ हमारी एक टीचर थी, उसको गोली लगी हुई थी। तो थोड़ी देर बाद जब दहशतगर्द दोबारा आए और उन्होंने आग लगाई कमरे में तो वो टीचर जल रही थी। तो मैं टीचर को देख के रो रहा था, बिल्कुल मैं बहुत ज्यादा खफा था कि अभी मैं क्या करूँ, मैं खुद भी कुछ नहीं कर पा रहा था। मेरा एक भाई शहीद हो गया और मेरे बहुत से दोस्त मैंने उस वाकये में खोए, तो इसको मैं बयान नहीं कर सकता इस दिन को अपने अल्फाज से।
अहमद की वालदा कहती हैं कि शायद ही कोई ऐसा दिन हो जब बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करते वक्त इनकी आंखें नम ना हो।
16 दिसंबर के दिन ने तमाम पूरे पाकिस्तान को हिला करके रख दिया है और स्पेशली वो लोग जिनके बच्चे उनसे बिछड़ गए, बहुत खूबसूरत जिंदगी गुजार रहे थे। एक हमारी फैमिली की अगर बात करें हम, बहुत खूबसूरत जिंदगी थी, 3 बच्चे, ایک اچھا وقت، لیکن ان دہشت گردوں نے ہماری زندگی تباہ کر کے رکھ دی۔ میرا ایک بچہ شہید ہو گیا ہے اور ایک زخمی ہے، اور دوسرا ڈر کے مارے کافی دنوں تک اسکول نہیں جاتا تھا۔
احمد برمنگھم کے اسی محلے کے اسکول جاتے ہیں اور یہیں کی مسجد بھی۔ برطانیہ فی الوقت تو ان کا گھر ہے، لیکن احمد اور ان کے خاندان کا دل آج بھی پشاور اور اس کے گلی کوچوں میں اٹکا ہوا ہے۔
گو کے سانے نے احمد اور اس کے خاندان کو گھر بار اور رشتے داروں سے دور کر دیا ہے، لیکن ساتھ ہی احمد کے لیے نئی راہیں بھی متعین کر دی ہیں۔
میں سوچتا تھا کہ میں آرمی افسر بنوں گا، لیکن جب اس حادثے کے بعد مجھے اس طرح محسوس ہوا کہ یہ سب کچھ جو ہے، یہ حالات، یہ آرمی کے دم سے کنٹرول نہیں ہو سکتی۔ یہ صرف تعلیم ہی ہے جو اس کو کنٹرول کر سکتی ہے، اس کو شکست دے سکتی ہے۔ میرا ابھی ارادہ ہے کہ انشاءاللہ میں ڈاکٹر بنوں گا مستقبل میں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی میں اپنی زندگی کو ایک بامقصد زندگی بناؤں، جن سے تعلیم کے لیے کام کروں، جیسے ملالہ یوسفزئی جو بہت انسپائریشنل ہے سب لوگوں کے لیے، وہ کر رہی ہیں۔
پاکستان میں احمد کی طرح سینکڑوں اور بچے تعلیمی اداروں پر دہشت گرد حملوں سے بالواسطہ یا بلا واسطہ متاثر ہوئے ہیں، لیکن یہ سوال آج بھی بارہا کیا جاتا ہے کہ ان حملوں سے کتنا سبق سیکھا گیا، اور اسکول جانے والے بچے آج کتنے محفوظ ہیں۔ عادل شاہ زیب، بی بی سی نیوز، برمنگھم۔
پشاور کے اسکول پر ہوئے حملے کے بعد پاکستان نے چرم پنتھ کے خلاف جنگ چھیڑنے کا اعلان کیا تھا۔ ہمارے سہیوگی واتسلیہ رائے نے پشاور میں موجود ورشٹھ پترکار رحیم اللہ یوسفزئی سے بات کی اور پوچھا کہ اس ایک سال کے دوران پاکستان اور پشاور کتنا بدلا ہے۔
ہاں، یقیناً آج ایک سال پورا ہو گیا ہے اور یہاں پہ بڑے بڑے ایونٹس ہو رہے ہیں۔ آج بھی آرمی پبلک اسکول میں ایک بڑا فنکشن ہوگا۔ یہ اسکول بالکل بدل گیا ہے۔ پہلے جب حملہ ہوا بہت تباہی ہوئی تھی، ابھی وہ جو ہال ہے اس کو پھر سے ٹھیک کیا گیا ہے اور ایک نیا ہال بنایا گیا ہے۔ پرانا ہال اب جمنیزیم بن گیا ہے۔ اسکولوں کی سیکیورٹی بہتر بنائی گئی ہے۔ اور جب یہ حملہ ہوا تو پاکستان میں بہت بڑا ایک صدمہ لوگوں کو آیا، اور حکومت کے اوپر دباؤ بڑھا کہ یہ جو پالیسی ہے اس کو تبدیل کیا جائے۔ تو اس کے بعد ایک نیشنل ایکشن پلان بنا، اور کچھ پیش رفت ہوئی ہے، لیکن ابھی بہت کچھ کرنا باقی ہے۔
پشاور میں اسکول پر حملہ ہوا، اس کے بعد جو سزائے موت پر روک لگی ہوئی تھی وہ بھی ہٹی، کوئی اثر ہوا ہے؟
سرکار کے اوپر کافی دباؤ تھا، تو سینا نے کہا کہ ملٹری کورٹس بننے چاہیے۔ اس کے لیے ضروری تھا کہ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن آئین میں تبدیلی کی جائے۔ تو یہاں پہ کوئی 9 ملٹری کورٹس بنے ہیں، 300 سے زیادہ لوگوں کو پھانسی دے دی گئی ہے۔ اس کی مخالفت بھی ہوئی ہے ملٹری کورٹس کی، لوگوں نے کہا کہ یہ صحیح طریقہ نہیں ہے، پاکستان کی جو جوڈیشری ہے اسی کو کام کرنے دیں۔ لیکن سینا نے چاہا اور وہ ملٹری کورٹس بن گئے۔ ابھی یہ ہے کہ جو ملٹنٹس ہیں، طالبان ہیں، باقی ان کو تو میرے خیال میں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ البتہ یہ ہے کہ آئندہ کے لیے جو اور لوگ اگر وہ چاہیں کہ ملٹنٹس بن جائیں، طالبان کے ساتھ شامل ہو جائیں، شاید ان کے لیے ایک پیغام ہے۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ 2 سال تک یہ ملٹری کورٹس رہیں گے، تو کیا واقعی اس سے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا؟
ممبئی حملے کے جن لوگوں پر آروپ لگے ہیں ان کے خلاف پاکستان اس تیزی سے ٹرائل نہیں چلا رہا ہے، بھارت بھی ہر بار اس مانگ کو اٹھاتا ہے، تو کیا یہ پیمانے الگ الگ ہیں پاکستان میں چرم پنتھ سے لڑنے کے لیے؟
یہ شکایت نہ صرف انڈیا کو ہے بلکہ افغانستان کو بھی ہے۔ افغانستان کی سرکار کہتی ہے کہ افغان طالبان اور حقانی نیٹورک کے خلاف پاکستان میں کاروائی نہیں ہوتی، صرف ان کے خلاف کاروائی ہوتی ہے جو پاکستان کے خلاف جنگ کر رہے ہیں۔ پاکستانی سرکار کہتی ہے کہ یہ تو کورٹ کا، جوڈیشری کا مسئلہ ہے۔ میں بھی جو انڈین فورن منسٹر سشما سوراج اسلام آباد آئی تھی، تو شاید اب جو یہ بات چیت ہوگی اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ یہ جو ٹرائل ہے اس میں تیزی آئے گی۔ پاکستانی سرکار اب یہ دعویٰ کرتی ہے کہ کوئی گڈ اور بیڈ طالبان نہیں ہے، لیکن اب ظاہر ہے کافی لوگوں کو یقین نہیں ہے۔
ایک سال پورا ہو گیا ہے پشاور کے حملے کو، پاکستان، پاکستان کے بچوں کے لیے، وہاں رہنے والے لوگوں کے لیے، باہر سے آنے والے لوگوں کے لیے، اب کتنا محفوظ ملک ہے؟
دیکھیں، ہم تو پشاور میں رہتے ہیں، ہمیں یاد ہے 2008 से लेके 2011-12 तक यहाँ पर बहुत ही खतरा था, और हर दिन हर दूसरे दिन यहाँ पर कोई न कोई वाकया होता था। अब तो हम अपने आप को काफ़ी महफूज महसूस करते हैं। पेशावर में रौनकें वापस आ गई हैं। अभी भी इक्का दुक्का हमले होते हैं, लेकिन वो पुरानी बात नहीं है। खौफ भी कम हो गया है। पूरे पाकिस्तान में हालात पहले के मुकाबले में बेहतर हैं।
पेशावर में वरिष्ठ पत्रकार रहीम उल्लाह यूसुफ़ज़ई से बात कर रहे थे वात्सल्य राय। पेशावर का हमला और निर्भया कांड, इनसे जुड़ी बहुत सी खबरें और रिपोर्ट आप हमारे वेबसाइट पर भी पढ़ सकते हैं। पूरे दिन हमारी नज़र इन पर बनी रहेगी। और आज के अखबारों में क्या कुछ छपा है, इस पर नज़र डाल देते हैं हरता के साथ। हरता स्टूडियो में आ चुकी हैं, बताइए क्या छपा है अखबारों में आज।
जी निखिल, पहले पन्ने पर जाहिर तौर पर दिल्ली सचिवालय पर जो CBI के छापे पड़े उसके बारे में खबरें छपी हैं। राजनीतिक बवंडर जो खड़ा हो गया उसके बारे में, और उसके अलावा एक खबर और जो दिख रही है वो ये कि सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में डीजल SUV पर रोक के पक्ष में है, और हो सकता है आज इस पर कुछ आदेश दे दे सुप्रीम कोर्ट। कल फटकार लगाई थी कि बड़ी गाड़ियों को बंद किया जाए, अमीर लोग गाड़ी खरीदें और प्रदूषण करें, ये कैसे स्वीकार हो सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह लताड़ लगाई थी कल। और एक खबर है, पेट्रोल 50 पैसे और डीजल 46 पैसे प्रति लीटर आज सस्ता हो गया है, और अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों के 11 साल के सबसे निचले स्तर पर पहुँच जाने के बाद ये फ़ायदा मिल रहा है लोगों को। और इसके अलावा एक खबर जो मैं अपने सामने देख रही हूँ, अमर उजाला के पहले पन्ने पर ये खबर है, प्रदूषण से जंग हेडिंग के नीचे, दुनिया भर में मौत की 5 बड़ी वजहों में वायु प्रदूषण है। तो आजकल जो प्रदूषण को लेकर जो खबरें चल रही हैं,
भारत में समस्या है वो दुनिया में,
वो दुनिया भर में समस्या, और वायु प्रदूषण पूरी दुनिया की समस्या है। इससे ही जुड़ी एक खबर जागरण में मैं देख रही हूँ, भारत चीन ने बढ़ा रहे हैं वायु प्रदूषण, और इसमें वायु प्रदूषण सबसे ज़्यादा बढ़ रहा है। अमरीकी अंतरिक्ष एजेंसी NASA के निगरानी दल का ये खुलासा है। एक रिपोर्ट 195 शहरों की स्थिति पर जारी की गई है, इस पर एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें ये सब बताया गया है। इसके अलावा जो निर्भया हत्याकांड बलात्कार कांड में जुवेनाइल जो अपराधी रहा है और आरोपी जो है जिसके रिहाई पर रिपोर्ट का इंतज़ार हो रहा है, उसी से जुड़ी एक खबर मैं अपने सामने देख रही हूँ। नवभारत टाइम्स में ये रिपोर्ट छपी है, 50% बड़ा है जुवेनाइल क्राइम, मतलब कि नाबालिग लोगों के अपराध में शामिल होने की घटनाएं पिछले 10 सालों में लगभग 50% तेज़ी से बढ़ गई हैं। तो ये खबरें मेरे सामने मैं देख रही हूँ। इसके अलावा जो मैं देख पा रही हूँ उसमें अबोहर हत्याकांड में 3 गिरफ्तार किए गए हैं। पंजाब में अबोहर शहर में 2 लोगों को के हाथ पैर काट दिए गए थे, जिसमें दलित हैं एक युवक जिनकी हत्या हो गई थी, जिसके बाद काफ़ी हंगामा जो है संसद में किया गया था। एक और खबर जो है वो मैं बताना चाहती हूँ, पोर्न क्लिप देखने वाला एक विधायक निलंबित कर दिया गया है, भुवनेश्वर की ये खबर है। ओडिशा विधानसभा के भीतर सोमवार को मोबाइल फोन पर आपत्तिजनक क्लिप्स देखने के आरोप में कांग्रेस विधायक नब किशोर दास को सदन से निलंबित कर दिया गया है 1 हफ्ते के लिए। और
बहुत शुक्रिया हरिता अखबारों की इस विस्तृत समीक्षा के लिए। और अब आखिर में सुन लेते हैं प्रमुख समाचार एक बार फिर।
BBC समाचार। दिल्ली के निर्भया कांड को आज 3 साल पूरे हो रहे हैं, वहीं पेशावर में स्कूल पर चरमपंथी हमले को भी आज 1 साल पूरा हो रहा है। इस हमले में 150 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी, जिसमें ज्यादातर बच्चे शामिल थे। अमेरिका के लॉस एंजलिस में हमले की धमकी मिलने के बाद करीब 1,000 स्कूलों को बंद करने के फैसले पर अमेरिका की हाउस इंटेलिजेंस कमेटी ने कहा है कि ये धमकियां फर्जी थीं। न्यूयॉर्क में भी हमलों की धमकी मिली थी। अमेरिका और रूस ने कहा है कि दुनिया भर के ताकतवर देश न्यूयॉर्क में शुक्रवार यानी 18 दिसंबर को संयुक्त राष्ट्र में सीरिया की शांति प्रक्रिया से जुड़ा एक प्रस्ताव लाएंगे। दिल्ली सचिवालय में CBI के छापे के बाद राजनीतिक तूफान खड़ा हो गया है, सभी विपक्षी पार्टियों ने केंद्र सरकार की आलोचना की है। BBC समाचार।
प्रमुख समाचार सुना रही थी हरिता कांडपाल। नमस्कार भारत में आज इतना ही, ठीक 1 घंटे बाद विश्व भारती में आपसे दोबारा मिलेंगे। आज स्टूडियो संभाल रहे हैं शाकिर आलम। पूरी टीम के साथ निखिल को दीजिए अनुमति और देखते रहिए BBC हिंदी .com।